ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रन्थराश्रीमद्भागवतम् दूसरा अध्याय पांच अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण कारण और श्लोक संख्या है 14। मेरे पीछे दोहराई है द्रव्यं कर्मा च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मान् वासुदेवो परो ब्रह्मन् च चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् च चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वता। अनुवाद शब्दात् च तथा कालः द्रव्यं अवयव कर्मा अन्यन्य क्रियाएं च तथा काल शाश्वत काल च भी स्वभाव स्वभाव जीव जीव एव निश्चय ही च तथा वासुदेवात् वासुदेव से परा भिन्न अंश ब्रह्मान् हे ब्राह्मण ना कभी नहीं च भी अन्य पृथक अर्थ महत्व आस्ति है तत्वतः वास्तव में। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद सृष्टि के पांच मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तात्पर्य यह व्यवहार जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंग शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है सारे अवयव यथा पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की धारणा बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। भौतिक जगत में जीव ठगिनी अविद्या से छला जाता है किंतु वैकुंठ लोक में वो किसी भ्रम के बिना सामान्य अवस्था में रहता है। जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अवयव और न आध्यात्मिक भिन्नांशी भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे वे भगवान की बहिरंगा अंतरंगा या तटस्थ शक्तियों के प्रतिफल हो, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है, जिस प्रकार प्रकाश उष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है। इनमें से कोई अग्नि से भिन्न नहीं, सभी मिलकर अग्नि कहलाते। इसी प्रकार सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण है। जबकि भगवान उपर्युक्त भौतिक अवयवों की धारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के इस पांचवें अध्याय में वर्णन किया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा। सबसे पहले तो परीक्षित महाराज ने कई प्रश्न पूछे थे और उनका महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ये जो सृष्टि है ये कैसे प्रकट होती है, कैसे सृजित होती है, इसके पीछे कौन सृजन करता है, उसका आप हमें वर्णन करो। शुकदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न पूछा था तो शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर देना शुरू किया और उत्तर देते हुए उन्होंने क्या किया, कहा कि हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न पूछा है ये सेम इसी प्रकार का जो प्रश्न है नारद ने किनको पूछा था, ब्रह्मा जी को पूछा था। और फिर ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया है उसी उत्तर को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वही जो संवाद है उन दोनों के बीच में, ब्रह्मा जी और नारद के बीच में, उस संवाद को मैं बता रहा हूं। तो जो ब्रह्मा है, क्योंकि नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र है, कई सारे शुरुआत जब सृष्टि की होती है तो ब्रह्मा को भगवान आदेश प्रदान करते हैं और वो आदेश प्रदान करते हैं कि आप क्या करो, सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन जो नारद है वो गलत रूप से समझ रहा था कि सृष्टि के सर्वे सर्वा ब्रह्मा जी हैं। उनको पता नहीं कि ब्रह्मा जी से परे भी कोई है। ब्रह्मा जी तो उस कारपेंटर के समान है जिसको आप लकड़ी आदि वस्तुएं दे दो और वो किसी बेंच या फिर स्टूल आदि बना लेता है। तो बाहरी रूप से देखा जाए तो लगता है कि कारपेंटर ही सृजन कर रहा है, प्रमुख कारण है। लेकिन वास्तव में उसको जो इनग्रेडियंट्स है, पदार्थ आदि है, सृजन करने का शक्ति है, वो किसी और व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वैसे ही ये जो सृष्टि है इसके जो मेन कारण कौन है? कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में कहते, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के नाभि कमल से, स्वयंभू कहा जाता है, ब्रह्मा का एक नाम स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब है जिन जो भगवान के द्वारा सीधा प्रकट हुए हैं, वो जो माँ के गर्भ से नहीं, उनका प्राकट्य नहीं हुआ। आप देखो कितने स्पेशल है ब्रह्मा, वैसे देखा जाए कितने स्पेशल जीव है। इस ब्रह्मांड के सारे जो जीव है उनको माँ के गर्भ में सड़ना होता है, जन्म की जो यातनाएं हैं, यंत्रणा है, उनको भुगतना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं। ब्रह्मा जी तो कमल से प्रकट हो जाते हैं। और ये नहीं कि ब्रह्मा जन्म लिया और बहुत छोटे से बच्चे थे और रोने लगे, कौन उनको दूध पिलाएगा, खिलाएगा, सुलाएगा, नहीं, प्रकट होते ही उनका शरीर नवयवन। जनरली ब्रह्मा को दिखाते फोटोग्राफ्स में बहुत बूढ़े हैं। पितामह जैसे विदेश में भगवान की जो संकल्पना है कि भगवान कैसे हैं, तो भगवान को पुरातन दिखाया जाता है, भगवान बहुत ओल्ड व्यक्ति है। भगवान वो व्यक्ति है जो ये संसार का सबसे पुराना व्यक्ति है। तो हमारे भौतिक दृष्टि से हम क्या सोचते हैं, जो भी पुराना है वो जरूर बूढ़ा होगा। तो इस प्रकार से भगवान अचिंत्य है, लेकिन भौतिक अनुपात में हम जब गिनते हैं या नापते हैं तो हम भगवान को भी हमारे जैसा एक व्यक्ति समझते हैं और उसके अनुसार ही उनकी कल्पना करते हैं। तो वैसे ब्रह्मा के साथ ऐसे नहीं है, ब्रह्मा बूढ़े नहीं है, वर्णन आता है ब्रह्मा जी बहुत सुंदरवान व्यक्ति है, युवाशील है। अभी अभी तो 50 साल हुए हैं, 50 खत्म ही हुआ है ब्रह्मा का और 51 शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जब ये जगत में प्रकट होते हैं भगवान के नाभि कल कमल से, और किसके नाभि कमल से प्रकट होते हैं? गर्भोदकशायी विष्णु। उनके पिताजी कौन है? गर्भोदकशायी विष्णु। और माता कोई नहीं है ब्रह्मा जी की, माता पिता कौन है? कृष्ण है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, वास्तव में सही श्लोक है उनके लिए। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा, पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन मैं ही तुम्हारे माता हूं, पिता हूं, पिता महावी हूं, सब कुछ हूं। तो वैसे ही ब्रह्मा का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा के माता पिता पितामह सब कुछ कृष्ण है। तो गर्भोदक्ष है विष्णु, क्योंकि जगत की सृष्टि भगवान करते हैं, तो ये जगत की सृष्टि करने का उद्देश्य है करुणा का विस्तार। भगवान का हृदय, जैसे हम कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। तो कृष्ण करुणा के सागर है, दीन वत्सल है। इस संसार में दीन, हर कोई दीन दुखी है, कौन नहीं है दीन दुखी, हर कोई है। तो भगवान को रहा नहीं जाता। भगवान क्या करते हैं ऐसे जीवों के लिए, जो जीव भगवान से अलग होकर भौतिक भोग करना चाहते हैं, उनके ऊपर अपनी करुणा दृष्टि, करुणा प्रकट करने के लिए वो दो चीजों को इस जगत में ले आते हैं। ये जगत में लाते नहीं, पहले तो ये जगत को क्रिएट करते हैं। क्यों ये जगत को क्रिएट करते हैं? क्योंकि उन जीवों को ये मौका देने के लिए कि अपने गलती को सुधार करो। इसलिए ये इसकी तुलना शास्त्रों में भौतिक जगत की तुलना कारागृह से करते हैं, जेल से करते हैं। जेल का दूसरा नाम क्या है? सुधार ग्रह, जहां जाकर आपको अपने में सुधार लाना है। लेकिन यहां आकर जो सुधार नहीं करता वो और नीच और पतित होता है और अपना पतन कर लेता है, उसको सुधार की इच्छा नहीं होती। तो लेकिन भगवान की यह करुणा का विस्तार है भौतिक जगत, और भगवान देखते हैं कि उन जीवों को अपॉर्चुनिटी दो जो मुझसे अलग हो गए हैं, जो मुझसे मेरे पास वापस आ जाए। तो आध्यात्मिक जगत का ही एक छोटा सा एक पोर्शन भाग भौतिक जगत है एक प्रकार से, जिसको आध्यात्मिक जगत का डस्टबिन कहा जा सकता है। वो क्या है? भौतिक जगत है। डस्टबिन में आप सभी गंदी चीजें डाल देते हो, तो ऐसे जो यहां है जो निकामी है उनको डस्टबिन में डाल दिया है, और डस्टबिन में ही वो आनंद की खोज कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान इस जगत की उत्पत्ति करते हैं। जो महाविष्णु है, अपने महाविष्णु भगवान का विस्तार है, महाविष्णु से भगवान अपने महाविष्णु के रूप में लेटे होते हैं कारणानंद सागर में, और उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। उनके रोम कूप से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते, ब्रह्म अंड, अंड मीन्स अंडा। तो ऐसे हजारों हजारों करोड़ों अनगिनत अंडे निकलते हैं, और वो एक भौतिक ब्रह्मांड है। और भगवान ने देखा कि अरे ये अंडे खाली हैं, क्या करें? तो भगवान उसमें घुस जाते हैं, अपना दूसरा विस्तार करते हैं, और उस विस्तार क्या है? सो अंश जिसको कहते हैं। भगवान दो प्रकार से विस्तारित होते, एक है सो अंश, एक है विभिन्न अंश। तो जो जीव है वो भगवान का विभिन्न अंश है, और भगवान अपना एक विस्तार करते हैं भगवत रूप में, वो है सो अंश। तो वही भगवान फिर देखते हैं कि ये ब्रह्मांड तैयार हुआ है, इसकी तो खाली है, तो भगवान प्रवेश करते हैं उसमें, गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में उसमें प्रवेश करते हैं, और जाकर देखते खाली है, तो अपने पसीने से उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं। और आधा भरने के बाद, क्योंकि उनके इससे बना पसीने से आधा भर जाता है, इसलिए उसको गर्भोदक सागर कहते हैं। गर्भोदक शाही फिर भगवान उसमें लेटते हैं, शाही में शयन करना। जैसे भगवान का एक नाम वटपत्र शाही है, वटपत्र शाही मीन्स वट के जो पत्ता है, वट वृक्ष का जो पत्ता है, भगवान उसमें क्या करते हैं? शयन करते हैं। जगन्नाथपुरी में वो स्थान है, भगवान वहां शयन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान उस जल में शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम गर्भोदक शाही विष्णु होता है। और उन्हीं गर्भोदक शाही विष्णु के नाभि कमल से एक कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर इस जगत का पहला जीव उत्पन्न होता है। आप देखो, मैं भी बाहरी रूप से आने लगता है कि ब्रह्मा का पद बहुत बड़ा है, लेकिन पहला जीव है जो भगवान से अलग हुआ है एक प्रकार से देखा जाए, है कि नहीं? पहली पोजीशन मिली है ब्रह्मा, इतना बड़ा स्थान उसको मिला है। लेकिन जब ये जीव बहुत पायस होता है, ब्रह्मा का पद उस जीव को दिया जाता है जो 100 जन्मों तो क्या करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है कठोरता से, जो नहीं है 100 जन्मों तक तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, और वो क्वालिफाइड होता है ब्रह्मा। कई बार क्वालिफाइड जीव मिलता ही नहीं, फिर भगवान खुद अपना विस्तार ब्रह्मा के रूप में करते हैं। कई मैनेजमेंट अफेयर में जितने देवी देवता हैं 33 करोड़, उनकी कई पोजीशंस को भगवान को लेना पड़ता है। तो फिर ब्रह्मा का जब जन्म हुआ, उन्होंने इधर उधर देखने लगे कि मैं कहाँ हूं और कमल है उसके ऊपर, और वैसे अज्ञान में थे, तो पहले तो जिज्ञासा होती है व्यक्ति को ना कि कहाँ आया हूं मैं, कहाँ छोड़ दिया है, तो ढूंढता है। तो जो कमल का नाल था, जो डंडल है, उसके नीचे जंप लगाता है ब्रह्मा, नीचे जाता है, कहाँ हूँ, कौन है, नीचे कहाँ से मैं आया हूँ, मेरी उत्पत्ति क्या है। तो जितना मर्जी नीचे जाए कोई अंत का अंत नहीं लग रहा था। फिर ब्रह्मा को आवाज दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, और वो क्या थी? तप। तो फिर ब्रह्मा समझ गए कि वास्तव में मेरे जन्म के रहस्य को जानना है, या जो परम सत्य है या समस्त कारणों के कारण को मुझे जानना है तो क्या करना होगा, मुझे तपस्या करनी होगी। तो मतलब इस सृष्टि का जो शुरुआत है, हाँ, शुरुआत का शब्द ही है तपस्या। तो जो भी जीव इस जगत में आया है उस व्यक्ति को क्या स्वीकार करना चाहिए, तपस्या को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम तपस्या का मतलब है स्वयं ही ऐसी चीजों को अपने जीवन में लाना जिसके द्वारा एक प्रकार का कष्ट हमें मिलता है, लेकिन वो कष्ट क्या है, आनंद का कारण बनता है। कोई भी व्यक्ति तपस्या नहीं करना चाहता, इसलिए तो कितने सारे मशीन्स निकली है, कुकिंग करने के लिए मशीन, कपड़े धोने के लिए मशीन, घर में वॉक्यूम क्या है, वॉक्यूम क्लीनर, सफाई करने के लिए मशीन, चलने चलते भी चलना भी नहीं आजकल लोगों को, निकलते गाड़ी में बैठेंगे, मतलब हर चीज के लिए है यंत्र बना लिया है। तपस्या नहीं उठाना चाहता व्यक्ति, लेकिन वास्तव में ये भौतिक प्रकृति बहुत यह है, पावरफुल है, निर्दयी है, वह हमसे तप के बिना नहीं छोड़ती। जितना मर्जी हम आविष्कार कर ले मशीन आदि का, लेकिन भौतिक तपस्या में हम लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति प्रकृति के द्वारा फोर्सफुली उसे तपाया जा रहा है। कितने प्रकार के तापों में वो तप रहा है, तीन प्रकार के तापों में, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो इसलिए भगवान के एक अवतार है ऋषभ देव, उन्होंने कहा नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अरहते विडभुजामे। नायम देहो, ये जो देह है ये आपको विडभुजाम, विडभुजाम मीन्स वो सुवर जो मल खाता है, हाँ, उसके जैसे भोग करने के लिए नहीं मिला है, उसके जैसे मत गवाओ। क्या करो, तपो देव्यम पुत्र का इन सत्वम। जो ऋषभ देव थे भगवान के एक अवतार, ऋषभ का मतलब है श्रेष्ठ, तो ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं अपने घर को त्यागने से पहले, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम है उसको जैसे अपना 50 साल आयु हो जाए तुरंत वन में निकलना चाहिए। पंचोश ऊर्ध्वम वनम रजे, कि 50 आयु हो गए तो उसने अभी सोचना चाहिए कि अभी मैं, मुझे क्या है, ये रहने के लिए मेरा स्थान नहीं है, अभी मुझे वन में निकलना चाहिए। और बेस्ट वन क्या है, वृंदावन। क्यों निकलना चाहिए, क्योंकि बचा हुआ जीवन उसको पूर्ण रूपेण कृष्ण के सेवा में, भगवत नाम कीर्तन आदि में पूर्ण रूपेण यूज करना चाहिए। 24 घंटे बचे हुए हैं, क्योंकि हम यहां बने रहने के लिए नहीं बनाए गए, हमें यहां से हमें निकालने के लिए हम बने हैं, परमानेंट रहने के लिए नहीं हम यहां बने हैं। तो इसलिए शास्त्र जोड़ देते हैं कि 50 आयु व्यक्ति की हो जाती है तो व्यक्ति को वन में निकलना चाहिए, सारे आसक्तियों को त्याग कर। लेकिन हम अपने घर परिवार, अपनी वस्तुएं, अपने शरीर आदि से बहुत आसक्त हैं, लेकिन फिर ये आसक्त बने रहेंगे तो जो भगवान की प्रकृति है, भगवान हमें शक्ति से निकालेंगे। फिर या तो आसक्ति छोड़ो या फिर शक्ति को ग्रहण करो, हाँ। और शक्ति क्या है, नाना प्रकार के विपदाएं कष्ट आदि के द्वारा हम शांत नहीं रह पाते। तो इसलिए जो तपस्या है वो स्वयं ही स्वीकार करनी चाहिए व्यक्ति को। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है, कलयुग में सुबह जल्दी उठना, कलयुग में बहुत बड़ी तपस्या है। लोगों को जीवन में सुख क्या है, लंबे समय तक सोते रहना, ये उनके लिए सुख है। वो इंतजार करते हैं कब संडे आएगा, क्यों संडे आएगा बाबा, कहते संडे इसलिए कि हम दिन 11-12 बजे तक सोते रहे, इससे बढ़कर आनंद नहीं है। तो जो वास्तव में भगवत उन्मुख होना चाहता है, भगवान की ओर अग्रसर होना चाहता है, उसके लिए सबसे पहला जो तपस्या है सुबह उठना। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं जिस व्यक्ति ने सुबह जल्दी उठना नहीं सीखा है, समझो कि वो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं है, भक्तिमय जीवन में वो सीरियस नहीं है, ये पहला लक्षण है उसका, बाकी चीजें तो बहुत दूर। तो ये जो तपस्या है, कौन कौन सी तपस्या को स्वीकार करना चाहिए? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या किस लिए स्वीकार करनी चाहिए व्यक्ति को? भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए। मन की तपस्या है, वाणी की तपस्या है, शरीर की तपस्या है। गीता में भगवान की तपस्याओं, तीन तपस्याओं का वर्णन करते हैं कि मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर आदि की तपस्या। तो इन तपस्याओं को हम जब स्वीकार करते हैं तो वास्तव में हमें वैराग्य का वर्धन होता है। क्या होता है? वैराग्य आता है, विरक्ति आती है। और विरक्ति इस चीज से आती है, भौतिक भोगों से हम विरक्त होने लगते हैं धीरे धीरे, और हमारी जो आसक्ति है वो भगवान की ओर बढ़ जाती है। और यदि हम भगवान की ओर अपनी आसक्ति को नहीं बढ़ाते तो निश्चित रूप से इस भौतिक जगत की जो आसक्ति, लगाव, प्रेम, स्नेह आदि है, वो हमारे दुखों का कारण बनता है। तो जो ब्रह्मा जी पहले उत्पन्न हुए और उनको सबसे पहले कोई चीज भगवान ने सिखाई तो वो तपस्या है। बल्कि हमारे जीवन में कुछ भी तपस्या नहीं है, देखा जाए व्यक्ति क्या तपस्या करता है, दिन रात मेहनत कर रहा है परिवार का पालन पोषण आदि करने के लिए, वो तो जबरदस्ती सख्ती से उससे तपस्या की करवाई जा रही है। किसको अच्छा थोड़ी लगता है सुबह उठ के ऑफिस चलना, चले जाना, स्कूल चले जाना, किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। लेकिन नहीं जाएंगे तो फिर भूखे मरना पड़ेगा। तो शक्ति है माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमारे ऊपर शक्ति की जा रही है, जिसके कारण हम इस तपस्या को जबरदस्ती अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। लेकिन उतना ही प्रयास, उतनी ही तपस्या हम भगवान के लिए करते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना हमारे लिए सरल हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और तपस्या की तो क्या, हाँ, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान कृष्ण के दर्शन किए, और उन्होंने, भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया अपने बांसुरी के द्वारा, उनको दीक्षा प्रदान की ब्रह्मा जी को। और जैसे वो उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तपस्या के द्वारा ज्ञान और वैराग्य विकसित होता है, तो फिर जब भगवान ने उनको भगवत नॉलेज दिया तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थनाएं उनके मुख से निकली। ब्रह्मा ने देखा, अरे यही है वो सारे कारणों के कारण। फिर उनके मुख से प्रार्थनाओं का एक तरंग निकलने लगी, एक के बाद एक, जिसको ब्रह्म संहिता कहा जाता है। और वो शुरुआत में वो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। इस अध्याय में वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वास्तव में जो गोविंद है, कृष्ण है, वो सारे कारणों के कारण है, आदि कारण है, अनादिरादि गोविंद। तो ब्रह्मा जी जो पहले जीव है वो इस सर्वोच्च चीज को स्वीकार करते हैं और नारद को ये उत्तर दे रहे हैं। बल्कि नारद थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, उनको भ्रम में पड़ गए थे। नारद सोच रहे थे कि ये जो ब्रह्मा है यही परम भगवान है, यही सर्वे सर्वा है। लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया, उनके भ्रम को दूर किया। जैसे बच्चों को लगता है मेरे पिता ही सब कुछ है कि नहीं? हाँ, लेकिन उन्होंने, बच्चों ने अभी बाहर भी नहीं देखा जगत, उनकी धारणा तो उस मेंढक के भांति है। प्रभुपाद जो एक स्टोरी बताते हैं, हाँ, डॉक्टर फ्रॉग जो मेंढक है वो एक कुएं में होता है
कोई भी सोचता है कि यही इससे बढ़कर स्थान नहीं है, यही सर्वे सर्वा है, सब कुछ है। और उसका एक मित्र आता है दूसरी दूर जगह से, दूसरा मेंढक, और वो कहते हैं हाँ कहां से आए हो आप, बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। उन्होंने कहा मैं प्रशांत महासागर से आ रहा हूं, पैसिफिक ओशन से आ रहा हूं। अच्छा कैसा है वो स्थान, कितना बड़ा है? तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा है, विशाल है, कई शब्द यूज कर रहा था। अब ये मेंढक जो कुएं में रह रहा है वो आपने बुद्धि जितनी मन में तान ले, कितना आपने बुद्धि पर तानेगा, कितना कल्पना करेगा, कल्पना से परे था। कहते क्या इतना बड़ा है इस कुएं से, तो इससे हजारों करोड़ों गुना बड़ा है। तो उसी प्रकार से स्थिति है, भगवान हमारे दृष्टि गोचर नहीं है, या भगवान हमारे बुद्धि तक सीमित नहीं है, वो बुद्धि में आने वाले नहीं है, या फिर शास्त्रों में भगवान बंद हो गए हैं, नहीं। भगवान यदि बुद्धि में आ जाते, इन ग्रंथों में बैठ जाते पूर्ण रूपे न, तो ये सब चीजें भगवान से श्रेष्ठ होती, हमारी बुद्धि भगवान से श्रेष्ठ होती। इसलिए भगवान कैसे है, अचिंत्य है, अचिंत्य खलु ये भावा न तारके न योजयत, कि भगवान अचिंत्य है, उनकी अचिंत्य शक्तियां हैं जिनको जानना ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। तो ये वेद आदि कैसे जान सकते हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, वेद भी चार वेद, लोग वेद वेद करते रहते हैं, ये वेद भी भगवान को नहीं जानते। अब किसने बोला, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। लेकिन एक जो चीज है वो भगवान को जानते हैं, कौन है वो, भक्त है। वेदों के लिए दुर्लभ हो सकते हैं, ब्रह्मा कहते हैं मेरे लिए भी दुर्लभ है। अभी ब्रह्मा के कितने सर है, हमारे पास एक ही बुद्धि है, ब्रह्मा के पास चार सर है, चतुर्मुख ब्रह्मा, चार मुख है, कितने सारे कान है, जीवा है, आंखें हैं, दिमाग है, चार चार दिमाग काम नहीं करते, इसलिए तो भ्रमित हो गए, भ्रमित हो गए कि नहीं। उन्होंने देखा अरे ये बालक कौन सा है जो ब्रज में है, नील मणि के समान है, छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े आसन को मार रहा है, यही क्या है, भगवान है, अपने आप को भगवान कहलाता है। तो उन्होंने कहा इसका थोड़ा परीक्षा लेता हूं, पास हो जाए तो भगवान है, फेल हो जाए तो भगवान नहीं, ऐसे आप एग्जाम नहीं ले सकते भगवान के। तो उन्होंने क्या किया, बछड़ों की चोरी कर ली ब्रह्मा ने, सारे बछड़े फ्रेंड्स सब कुछ चोरी कर दी। और पहले तो ब्रह्मा ने क्या किया, भगवान कृष्ण का ये शेड्यूल होता था, सुबह सुबह जब वो निकलते थे तो यशोदा माता एक पोटली बांध के कपड़े में देती थी सारा प्रसाद, और हर बालक के पास अपना अपना पोटली होता था, और रास्ते में जब चलते थे गोवर्धन की ओर दौड़ लगाते थे तो एक दूसरे का पोटली यहां से वहां के हाथ में फेंक देते थे, मस्ती करते करते पहुंच जाते थे गोवर्धन की तलहटी पर, और वहां जाकर फिर लंच नहीं ब्रेकफास्ट करने से पहले एक असुर को मारते थे भगवान रोज। ऐसे नहीं कि भगवान ने जो भागवत में दिए हुए लिमिटेड असुरों को ही मारा, नहीं, शास्त्र कहता है एक दिन ऐसा नहीं बीता कि जिस दिन भगवान ने असुर को नहीं मारा, ये उनका दिनचर्या में था, जब तक सुबह आसन का वध नहीं होगा तब तक ब्रेकफास्ट नहीं होगा। जैसे हम भागवत क्लास नहीं सुनेंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा, वैसे ही उनके लिए, क्योंकि हम आसुरी प्रवृत्ति को मारने के लिए भागवत क्लास सुन रहे हैं और आसुरों को सीधा मार रहे हैं भगवान। तो जब भगवान अपने सारे सखाओं के संग बैठे सारे, और हरे को बहुत उत्साह था, हर ग्वाल बाल को इतना उत्साह था कि मेरा जो मैंने जो लाया और पोटली में है वो आज कृष्ण को दो दूंगा, ये भक्त की भावना है। सबसे पहले किसको, कृष्ण को, बच जाए ना बचे बाद में मेरे लिए। तो हर एक जो ग्वाल बाल है वो बहुत अधिक उत्साह से अपना अपना पोटली खोलता है और कृष्ण बीच में बैठते हैं, लेकिन हर बालक को लग रहा था
कृष्ण ने मेरी ओर मुख किया है और दूसरों की ओर पीठ की हुई है, ये है भगवत भगवान कृष्ण। और फिर हरे बोल रहा था कृष्णा कृष्णा, ये देखो मेरे माँ ने लड्डू बनाया है, कचौड़ी है, पूरी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ये राइस है, ये सब चीजें हैं, परोटाज है, चपातीज है, तो भगवान स्वीकार करते हैं उन सब चीजों को। और फिर सब जब थे तो एक ने कहा अरे कृष्णा ये गाय बछड़े दिख नहीं रहे, गाय नहीं चला रहे थे भगवान उस समय, गोपाल नहीं थे, बछड़े पाल थे, गोपाल तो बाद में बने थोड़े जब बड़े हुए। फिर उनको कहा कि हमारे जो बछड़े हैं बहुत दूर चले गए हैं। अभी भगवान ने देखा कि इतना अधिक आनंद का वातावरण है, ये मेरे भक्त इतना आनंद ले रहे हैं एक दूसरे के संग में, अभी इनको मैं बीच में उठा के ये करूंगा कि जा अभी बछड़े लाओ ये करो, तो भगवान खुद ही निकल पड़े। भक्तों के आनंद को नहीं क्या नहीं करना चाहते थे, बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। तो फिर भगवान ने उठे वहां से और कृष्ण ने अपने हाथ में जो भी दही और राइस आदि जो भी लिया, और डिफरेंट भगवान के हाथ में यहाँ डिफरेंट आचार हुआ करते थे, आम का आचार और कौन सा आचार, नींबू का आचार, आंवले का आचार, डिफरेंट आचार। और तो इतने हाथ में लेकर कृष्ण खाते हुए जा रहे, ब्रह्मा को यही तो आश्चर्य लगता था, परम भगवान होकर ये ब्रज के छोटे से गांव में ग्वाल सखाओं के संग में और गोपीज आदि और इनके सामने सर्व सामान्य कार्य कैसे कर रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकता है, इम्पॉसिबल, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने जो बछड़े वास्तव में ब्रह्मा ने भगाए थे वहां से, भगवान ढूंढने लगे ढूंढने लगे ढूंढने लगे, बछड़े नहीं मिल रहे हैं, ढूंढ के थक के वापस आए, देखा जहां बैठे थे अपने सखाओं के संग में वहां भी सखागण नहीं है। तो भगवान को टाइम नहीं लगा, ये करामत किसकी है, ब्रह्मा की है। तो भगवान ने हाँ कुछ बोले नहीं, भगवान बहुत बुद्धिमान है, उनको पाठ पढ़ाना चाहते थे। अच्छा ये अपने आप को बड़ा योगी समझ रहे थे, कौन, ब्रह्मा, लेकिन भगवान कौन है, महायोगी, योगेश्वर, गीता में संजय कहता यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो योगियों के ईश्वर है, उनको योग शक्ति कहां से मिली है, इनसे मिली है। लेकिन भूल गया कि मेरे योग शक्ति के प्रमुख सोर्स उगम स्थान कौन है। तो फिर ब्रह्मा भगवान के बछड़ा आदि को गायब करता है, तो कृष्ण अपने आपका विस्तार करते हैं, और हर चीज कृष्ण थी उस समय, हर बच्चा के रूप में, हर उनका जो फ्रेंड है, गाय है, गाय के गले में जो रस्सी है, घंटी है, और बच्चे के हाथ में जो भी ब्रेसलेट आदि है, सब क्या थे उस समय, कृष्ण, कृष्ण से अभिन्न, कृष्ण के साक्षात भगवान ने अपना विस्तार किया था। एग्जैक्टली एक साल के लिए, एक साल तक, और उस समय कृष्ण जब उस दिन सारा ब्रज में वापस गए, तो हर जो ब्रजवासी हैं, गायें जो इंतजार कर रहे थे अपने बछड़ों का, माताएं अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, वो जब उन बछड़ों को, माताओं और बच्चों को देखकर उनका जो प्रेम है रोज से भी अधिक बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि अभी हर उनके बच्चे भी कृष्ण थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी, सारे ब्रजवासियों की इच्छा थी, वो अपने पुत्र आदि से सबसे अधिक प्रेम ब्रज में कृष्ण से करते थे, जितना प्रेम उनका अपने पुत्र के लिए नहीं था, पुत्री के लिए नहीं था, अपने घर के साथ सामान आदि के लिए नहीं था, गाय बछड़े के लिए नहीं था, किसी के लिए नहीं था, उससे अधिक प्रेम वो कृष्ण से करते थे। तो जब, और वो चाहते थे कृष्ण का वो संग, नजदीक का जो संग हमें मिले, तो कृष्ण इसी कारण से एक प्रकार से अपने आपका विस्तार करके हर घर में चले गए कृष्ण उस समय, और हर गाय भी चाह रही थी कि मेरा दूध निकला हुआ क्यों पिए कृष्ण, सीधा क्या करे, स्तनपान करे, गाय का दूध निकालने के बाद कृष्ण क्यों पिए, गाय चाहते थे, इतना वात्सल्य, मातृवत्सलता गाय के अंदर भी थी, तो भगवान क्या है, अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, भगवत सेवा की जो इच्छा है। तो भगवान उस समय हर ब्रजवासियों के घर में गए और उसी साल सारे जो युवतियां थी उनका विवाह भी हो गया। किसके साथ हुआ? कृष्ण के साथ ही। अल्टीमेटली वर्णन आता है क्योंकि सारी जो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण को पति के रूप में चाहते थे, कामना करते थे, और इसलिए थे उन्होंने मार्गशीर्ष महीने में कात्यायनी की पूजा की थी, कात्यायनी देवी कि कृष्ण पति के रूप में हमें मिले। तो उसी साल ये सब चीजें हो गई, जितनी ब्रजवासी सबने विवाह करवा लिया और गायें भी आनंद अनुभव करने लगी, दूध और अधिक से अधिक दूध दे रही थी। हाँ, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जब वापस आए थोड़ी देर के बाद, उनके लिए तो एक कुछ क्षण था लेकिन यहाँ के लिए तो पूरा एक साल निकल गया था। जैसे हम देखते हैं राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के लिए सत्ययुग में इतनी सुंदर पुत्री थी और बहुत हाईटेक, सत्ययुग के लोग तो पूरा आपके इस टेम्पल से भी ऊंचे होंगे। द्वापर सत्ययुग पूरा कितने ताड़ वृक्ष एक के ऊपर एक रखोगे इतना हाइट होता था। राजा मुचुकुंद का भागवत में पढ़ते हैं कितना हाइटेड थे वो, जब बाहर निकले तो द्वापर युग शुरू हुआ था, वो सत्ययुग के थे। कहते कि 10 ताड़ के वृक्ष एक के ऊपर एक रखो, इतने ऊंचे राजा मुचुकुंद थे। द्वापर युग के लोग ऐसे देख रहे थे उनको, ये क्या कह रहा है। भगवान ने कहा था जब काल यवन का वध किया, भगवान ने कहा तुम वहां चले जाओ बद्रीनाथ में जाके तपस्या करो। तो ये जब मुचुकुंद चलते थे लोग देखते थे, मुझे डरो मत मैं उधर जा रहा हूँ, बद्रीनाथ जा रहा हूँ। तो वैसे ही राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती का विवाह करने के लिए पृथ्वी में बहुत अच्छा युवक को ढूंढ रहे थे, कोई योग्य वर मिले। तो उन्होंने सोचा कोई मिल नहीं रहा है लेकिन एक व्यक्ति को जरूर पता होगा, वो थे ब्रह्मा। उनको लगा ये ब्रह्मा ही, हम कहते हैं ब्रह्मा सबके संगठन करवाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ब्रह्मा ने बनाई हुई जोड़ी है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा को ही पूछते हैं कि रेवती के लिए कौन योग्य है। अभी ये पूरा ब्रह्मलोक सत्यलोक चले गए, रथ उनके पास वो पावर था, राजा के पास रेवती, राजा रेवत अपनी पत्नी को पुत्री को ले गए रेवती को, और वह ब्रह्मा जी कुछ सेकंड के लिए बिजी थे, कोई अप्सरा कुछ कीर्तन सुना रहे थे या नृत्य आदि कर रहे थे, सारे देवतागण थे। तो उन्होंने कहा जस्ट कुछ एक मिनट के लिए वेट करो। उस वेटिंग लिस्ट में खड़े होते होते जब बात किया, उन्होंने कहा ये काम लेकर आया हूँ मैं आपके पास, मेरी पुत्री अविवाहिता है और उसका विवाह मैं चाहता हूँ, तो आप योग्य वर बताइए। कहते राजा तुम्हारा ना राज्य रहा है और पता भी नहीं तुम्हारे पीढ़ी वाले कौन, वंशज भी कोई है नहीं, और तुम कौन से इसकी बात करते हो, अभी जल्दी जाओ द्वापर युग शुरू हो गया है। वो कब सत्ययुग में आए थे ऊपर, द्वापर युग शुरू हुआ है, वहां कृष्ण और बलराम द्वारका में राज्य कर रहे हैं, उसमें जो बलराम है वो आपके पुत्री के लिए योग्य वर है, अब जाओ। अभी बलराम द्वारका द्वापर युग के छोटे थे और ये जो रेवती है कई ताड़ के समान ऊंची थी। तो बलराम ने सोचा इसको कैसे छोटी करूं, तो बलराम ने अपना हल ले लिया, हल को ऊंचा लगाया और खींच के नीचे कर दिया, और रेवती है वो छोटी हो गई दोपहर के साइज की। तो उसी प्रकार से उनके लिए तो एक क्षण है ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा आए देखा अरे जिन ये मैं कुछ सपनों में तो नहीं हूं, यहां भी बछड़े हैं वहां भी बछड़े हैं। फिर से वो गए देखने जिस गुफाओं में जहां भी रखे थे उन्होंने, सेम है वहां भी। फिर वो समझ गए कि हाँ ये योगेश्वर है, हमें छोटा सा क्षुद्र जीव हो, मुझे अपने छोटे से योग शक्ति पर इतना अहंकार, भगवान ने मेरे अहंकार को छोर छोर कर दिया। और फिर प्रणाम किया, प्रणाम किया तो भगवान ने दर्शन दिए। अभी कोई आज तक जितने भी आप देखो कोई भी व्यक्ति दर्शन करता है तो भगवान एक ही रूप में दर्शन देते, एक ही व्यक्ति एक ही फॉर्म, वहां हर फॉर्म विष्णु था, एक ही साथ हजार विष्णु देख रहे थे वो, हजार 400 फॉर्म चतुर्भुज रूप में। उसको लगा एक छोटा सा बच्चा है, एक ऐसे भगवान है, तो भगवान ने फिर सब जितने भी बछड़े ग्वाल बाल और जो भी वस्तुएं थे सारे भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए चतुर्भुज, और फिर प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, आप ही आदि और सर्व कारणों के कारण हो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा भी कहते हैं कि मेरे लिए भी भगवान अचिंत्य हैं, चार चार दिमाग होने के बावजूद भी, लेकिन हम इतना गर्व करते हैं कि मैं जान लूंगा भगवान को, अपने बल बूते पर समझ लूंगा, नहीं भगवान हमारे भौतिक बुद्धि से परे हैं। इवन इंद्र देवराज, देवराज को भी क्या हो गया था, अहंकार हो गया था, आप मेरी पूजा नहीं हो रही क्या हो रही है, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरी पूजा नहीं हो रही है, ये छोटे से बच्चे की बातों में आकर आप उठपटांग हरकतें करते हो। तो देवराज का गर्व चुरा तोड़ने के लिए भगवान ने किसको किसका सहायता लिया, गिरिराज का, वो भी राजा, फिर यहाँ भी राजा है गिरिराज। तो इस प्रकार से भगवान अचिंत्य है और ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते। मुह्यंति यत् सूरया, श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक ही है, जा कहा गया है कि जो महान महान देवता गण भी भगवान की भौतिक शक्ति से मोहित हो जाते हैं, उनको सही रूपे न समझ नहीं पाते हैं, वेदेषु दुर्लभ, वेदों के लिए भी भगवान दुर्लभ है, तो फिर किसका आश्रय लेना चाहिए भगवान को समझने के लिए। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तो, उनके जो भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं भगवान के, उनके लिए वो दुर्लभ नहीं है, उनके लिए क्या है, सुलभ है। भगवान गीता में वही कहते हैं, अनन्य चेता सततम योमां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना, जो अनन्य चेता अनन्य चित्त से जो मेरा नित्य रूप से स्मरण करता है, अनन्य चेता सततम योमां स्मरति नित्यशः, तो हमें नित्य स्मरण करने के लिए हमें जो 16 मालाओं का जप है वो करना आवश्यक है, तभी क्या होगा भगवान का नित्य स्मरण होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग कहते हैं अंदर में चलता रहता है, माया के विचार चलते रहते हैं अंदर, मन इतना दूषित है, अनकंट्रोल्ड है, कैसे भगवान का स्मरण होगा। लेकिन लोग अपने आप को क्या करते हैं, उस बात को मानना नहीं चाहते, अपने आप को स्थापित करना चाहते, इसलिए ऐसे जो भौतिकतावादी लोग हैं वो कहते हैं अंदर चल रहा है, बाहर सिगरेट पी रहा है, शराब मार रहा है, गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, अंदर चल रहा है, अंदर होना चाहिए भगवान, अंदर सब कुछ होना चाहिए, अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है, गंदे स्थान में भगवान कहाँ निवास करेंगे। तो लेकिन इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं कि मेरा नित्य सा स्मरण जो करता है अनन्य भाव से, तस्याहं सुलभ पार्थ, हे पार्थ उस व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूं, बहुत सुलभ हूं, सरल हूं। भगवान इतने सुलभ है, सरल है, छोटे छोटे बच्चों ने भगवत प्राप्ति कर ली है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज है कि नहीं, तो इसे देख सकते हैं कि कितने सरल है कृष्ण भगवत प्राप्ति करना। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, नित्य जो भगवत स्मरण है उस विधि को हमें स्वीकार करना होगा। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि सारे नियमों का, विधि विधानों का जो राजा है वो क्या है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कभी भी कृष्ण को न भूलना, ये सारे नियमों का राजा है। तो इस धरातल पर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत भक्ति के जो अंग हैं उनको गंभीरता से पालन करना चाहिए, रोज अपना हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जो संख्या पूर्वक नाम है गंभीरता से सावधानी पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए, रोज कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, रोज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता आदि को पढ़ना चाहिए, और घर में हो या जहां मर्जी हो कुछ ना कुछ भगवत सेवा हमें करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी दिनचर्या होगी, पूरे दिन हम कृष्ण को भूल नहीं सकते, और हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कृष्ण का हमेशा स्मरण रहा जाए, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास यही है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी, वो निष्ठा आ जाएगी जब हम क्या करेंगे, नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे।
जितना अधिक आप भगवान नाम को सुनते हो, जितना अधिक आप कृष्ण कथा को सुनते हो, उतने ही अधिक कृष्ण आपके हृदय में विराजमान होने लगते हैं। जितना अधिक, आलस नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक। पुराणों में वर्णन आता है कि जिस प्रकार से एक लाला व्यक्ति होता है, धनवान व्यापारी है, वो थकता नहीं है नोट गिनते गिनते, हाँ, गिनता रहता है। वैसे ही हमें भी थकना नहीं चाहिए भगवान के बारे में सुनने में, भगवत कथा करने में, भगवान के बारे में पढ़ने में। हाँ, मेबी शुरुआत में हमें टफ होगा, लेकिन हम रेगुलर करते रहेंगे तो धीरे 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 हमारा लगाव उसमें बढ़ेगा। और एक बार थोड़ा सा लगाव बढ़ गया, कृष्ण देखते हैं, अच्छा ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो भगवान को इच्छा शक्ति हमारे हृदय में डालते हैं, और जिसके द्वारा हमारा जो अनुराग है भगवान में विकसित हो जाता है। और इसीलिए हमारा जन्म है, इसलिए है कि एक न एक दिन हमारा जो तीव्र अनुराग है, प्रेम है, आसक्ति है, वो भगवान में हो जाए। भगवान में होने का मतलब क्या है? भगवान से संबंधित चीजों में, भगवत नाम, भगवत गुण, रूप, लीला, धाम आदि में हो जाए आसक्ति। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है कि भगवान में हमारा आसक्ति हो गया। तो इसलिए ये सर्वोच्च विधि है कि रोज हम श्रीमद् भागवतम को सुने, और तब हमारे लिए सरल होगा भगवान को जानना, और तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, कृष्ण कौन है, सारे कारणों के कारण है। एकले ईश्वर कृष्ण आद सब भृत्य, जावे जैसे नाचाय तैसे करे नृत्य। ये तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, कृष्ण सब कारणों के कारण है, वो असली स्वामी है, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं। और कृष्ण जिसको जिस प्रकार से नृत्य करवाते हैं, उसके समान वो व्यक्ति नाचने लगता है, कठपुतली के समान। दो चीजें हैं, जो बद्ध जीव है, बौद्धिक जगत में जो बद्ध है, वो व्यक्ति को कौन नचाता है? तीन गुण नचाते हैं। लेकिन भक्त है, उनको तीन गुण नहीं नचाते, उनको कौन नचाता है? कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उन्होंने प्रार्थना लिखी, और उस प्रार्थना में कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे इतने दूर लाए हो, तो आप जैसे चाहो वैसे नचाओ मुझे। तो भगवान के हाथ का कठपुतली बनना चाहता है भक्त। ये भक्त की पोजीशन है, ये भक्त की स्थिति है कि वो माया के आदेशानुसार नाचता नहीं है। क्योंकि माया तीन गुणों से बनी हुई है, प्रकृति, और भगवान के आदेशों से जो भक्त है वो नृत्य करता है। हाँ, और भगवान के आदेश हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? दो स्थानों से भगवान आदेश देते हैं, एक है साधु और दूसरा है शास्त्र। साधु का मतलब ही है भक्त, गुरु, डिवोटीज। तो भगवान के आदेश हमें भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, और दूसरा क्या है? शास्त्र है, जो भगवत आदेशों से परिपूर्ण है। तो इन दोनों का हम जितना संग करते हैं, उतना ही हमारा जीवन सरल हो जाता है, और उतना ही कृष्ण स्मरण बढ़ता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के नेता।